अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है, नॉवेल डॉक्टर दुबागु। पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 3। अब मैं क्या जानूं, साले ने अंग्रेज़ी में क्या कहा है। सुलेमान ने बुरा सा मुंह बना कर कहा, वो कहता है कि तुम इसकी बोतलें झूठी कर देते हो। बकता है साला, मैं तो सिर्फ सूंघ रहा था। सुलेमान, इमरान ने आंखें निकाली। अपनी ऐसी की तैसी में जाए, सुलेमान ने झुल्ला कर कहा और तेजी से बावर्ची खाने की तरफ चला गया। जोसेफ चुप खड़ा रहा और इमरान कलम उठाकर कागज के टुकड़े पर कुछ लिखने लगा और फिर इसे जोसेफ की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, इस पते पर जाओ, डॉक्टर है विच डॉक्टर, इससे कहना कि तुम्हारे सर पर बुरी रूहें मंडला रही हैं। जब तुम ऊँगने लगते हो तो एक चील तुम्हारे कानों में बड़े ज़ोर से चीखती है। लाओ, जोसेफ ने गुस्तीले लहजे में कहा और कागज़ इमरान के हाथ से लेकर फौजियाना अंदाज में एड़ियों पर घूमकर फ्लैट से बाहर निकल गया। वो कुछ इस किस्म का ताबदारी शिकार कुत्ता था, जितना कहा जाता इतना ही करता, किसी मामले में कभी बहस नहीं करता था और इस वक्त गुस्से में ही था और चाहता था कि किसी पर गुस्सा उतार कर जी हल्का कर ले। बाहर इसके लिए बहुत मौके थे, इसलिए खुद भी बाहर जाना चाहता था। इमरान के ख्याल से घर में किसी किस्से को तोल देना पसंद नहीं करता था। इमरान ने एक तवील सांस ली और जिस्म ढीला छोड़कर टांगे हिलाने लगा। उसकी पेशानी पर शिकने थी, शायद वो बहुत संजीदगी से सोच रहा था। फिर एक बेग चौंका और शरीर से मुस्कुराहट इसके होठों पर बिखर गई। इसने निजी फोन का रिसीवर उठाकर कैप्टन फयाज के घरेलू नंबर डायल किए और जल्द ही दूसरी तरफ से इसकी हैवी की आवाज़ सुनी, इसकी बीवी की आवाज़ सुनी। कौन साहब हैं? साहब ना कहो वरना तुम्हारे मियाँ कयामत बर्पा कर देंगे। अभी अभी वो मुझे भंगी बनाकर गए हैं। ओ तो आप हैं, फरमाइए, कोई बुरी खबर तुम तक पहुंची या नहीं? मैं नहीं समझी, फयाज ने कुछ नहीं बताया। नहीं तो खामखा बोर ना कीजिए, बताइए क्या बात है। महकमा खारजी के डिप्टी सेक्रेटरी तुम्हारे कौन हैं? ओ वो चिकन भाई, लाहौर वाला कुवत, मैं डिप्टी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। इमरान ने गुफीले लहजे में कहा, हाँ हाँ मेरे रिश्ते के भाई हैं हम लोग इन्हें, लेकिन भाई कहते हैं, उर्फियत है। तब तो अच्छी ही है कि मर गए। क्या मतलब, क्या बक रहे हैं आप? कुछ देर गुजरी, इन्होंने डॉक्टर दुआगु के फाटक पर खुदकुशी कर ली है, मैं वहाँ मौजूद था। हाय अल्लाह, और फयाज कहाँ है? झक मारते फिरते हैं। मैं आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, इमरान ने कहा और रिसीवर फील्डर में रखा। लिबास वगैरह की तरफ ध्यान दिए बगैर नीचे उतरे और टू सीटर में बैठकर फयाज के घर की तरफ रवाना हो गए। फयाज की बीवी बैरूनी बरामदे ही में टहलती हुई मिली, के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। इमरान भाई खुदा के लिए, इसने कुछ कहना चाहा मगर फिर होंठ मजबूती से बंद कर लिए। चलो अंदर चलो। वो दोनों नशिस्त के कमरे में आए। वो इमरान को इस्तफामाइया अंदाज में देखा लेकिन इमरान खामोशी रहा। आखिर वो फट पड़ी, क्या बोरियत फैलाई है। आपने अगर कोई बात हुई तो फयाज मुझे ज़रूर फ़ोन करते। इमरान इसे तेज़ नज़रों से घूर रहा था, आखिर आहिस्ता से बोला, तुमने उसे खबर क्यों पहुंचाई थी? केस की निगरानी हो रही है। मैं नहीं, नहीं तो اڑنے کی کوشش نہ کرو، فیاض کی قسمت میں بھی سوجائے معذرنما ہی لکھی تھی۔ عمران بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیاض کی بیوی کو غصہ آ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ عمران اس کے لہجے کو قطعی نظر انداز کر کے بولا، کسی تیسرے کو علم تو نہیں کہ تم نے اسے مسلح کر دیا تھا؟ وہ کچھ نہ بولی، صرف تھو نکل کر رہ گئی، بار بار نچلے ہوٹ پر زبان پھیر رہی تھی، اور عمران اسے متوسط بھولے جا رہا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے، مجھے بتاؤ ورنہ فیاض کی ملازمت پر زوال آنے کا خدشہ ہے۔ نن نن نہیں، اگر کسی کو بھی نہیں معلوم۔ فیاض کو بھی نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بے بسی سے عمران کی طرف دیکھتی رہی۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، انہیں علم نہیں، اب بھی نہ ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری طرف سے اس کے دل میں کدورت آ جائے گی۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو انکار ہی کرتی رہنا، ورنہ بات ضرور بڑھے گی۔ میں ایسا ہی کروں گی، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ مگر تم سے ایسی حماقت کیسے ہوئی تھی؟ وہ دیکھیے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، اس لیے انہیں آگاہ کرنا ہی پڑا۔ میں نے سوچا ممکن ہے فیاض کے محکمے کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ چکن بھائی بچاؤ کی کوئی صورت نکال لیں، لیکن انہوں نے خودکشی کر لی، میرے خدا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی موت کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ خیر، اب اس معاملے میں زبان قطعی بند رکھنا اور اس کے متعلقین سے اس وقت ہی رابطہ قائم کرنا۔ جب فیاض سے اس حادثے کی اطلاع ملے، یا اس کے متعلقین ہی تمہیں مطلع کریں۔ میں یہی کروں گی، میرے خیال سے وہ بہت بدنام آدمی تھا، پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ فیاض نے کبھی تذکرہ نہیں کیا؟ نہیں، عورتوں کے معاملے میں وہ بہت بدنام تھا، خدا جانے، اب تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ہائے بھابھی، کیسی تڑپ رہی ہوں گی آپ، اب کوئی سہارا نہیں، اولاد ہی ہوتی تو کچھ آنسو۔ کیا اللہ اولاد تھے؟ جی ہاں، بیوی یقیناً سوشل ہوں گی، وہ دونوں کسی نائٹ کلب کے ممبر بھی تو تھے۔ جی ہاں، ٹپ ٹاپ کے، غالباً وہیں اکثر دیکھا ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ مجھے بڑی ندامت ہے، ختم کرو فیاض پر ہرگز نہ ظاہر ہونے دینا، ویسے وہ تم پر شبہ ضرور ظاہر کرے گا۔ پھر عمران اٹھ گیا اور چلتے چلتے بولا، فیاض کو نہ معلوم ہونے پائے کہ میں اس وقت یہاں آیا تھا۔ نہیں معلوم ہوگا، اس نے بڑے خلوص سے کہا اور پھاٹک تک اسے چھوڑنے آئی۔ عمران پھر گھر واپس آیا، سلیمان نے بتایا کہ پرائیویٹ فون پر کال تھی، اس نے اسی گھر میں آ کر فون سے منسلک ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آن کر دیا۔ مہمانی کی آواز سنائی دینے لگی، میں نے کیپٹن فیاض کا تعاقب کیا تھا، وہ سیدھا اسی سپاہ خانے کے ایک آفیسر کے گھر گیا تھا جس کی لڑکی نے سیاسی بلی پال رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کس سے ملا تھا اور کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اوور اینڈ آل، عمران نے ٹیپ ریکارڈ بند کر کے ایک طویل سانس لی۔ یہ سلسلہ ایسا ہی تھا کہ فون پر کال ریسیو نہ ہونے پر پیغام خود بخود ریکارڈ ہو جاتا تھا۔ وہ پھر نشست کے کمرے میں آ بیٹھا، فون کی گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے آنے والی آواز پہچانی نہ جا سکی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہیلو، کون ہے؟ یہاں اس نمبر پر کون رہتا ہے؟ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن۔ او تو یہ نوبل جوزف، ہیوی ویٹ چیمپئن۔ جی ہاں، وہ میرا ملازم ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر دعاگو۔ ارے تو وہ حفشی آج ہی آپ کے پاس پہنچ گیا، عمران نے حیرت سے کہا، اسے برے برے خواب نظر آتے تھے، کہتا تھا آصف کا سایہ ہو گیا ہے، دماغ چاٹ رہا تھا۔ میں نے آپ کا پتہ بتا دیا، مگر آپ کو فون کا نمبر کس نے بتایا؟ وزٹنگ کارڈ پر موجود ہے، किसी के विजिटिंग कार्ड पर। मिस्टर नोबेल जोसेफ के विजिटिंग कार्ड पर। इमरान ने ठंडी सांस ली और बोला, डॉक्टर इसे देखिए, वो सचमुच आफियत ज़दा मालूम होता है। वो तो ठीक है, लेकिन इसने यहाँ हंगामा बर्पा कर दिया है। नर्स ने इसे यूं ही नगर कह दिया था, किसी बुरी नीयत से नहीं, बस मजाहियन। लेकिन वो बुरी तरह बिगड़ रहा है, दोनों में खासी जंग हुई है। मुझे बेहद अफसोस है डॉक्टर, इमरान ने शर्मिंदगी से भरपूर लहजे में कहा। इस नालायक को फौरन निकाल बाहर कीजिए। दूसरी तरफ से हल्का सा कहका सुनाई दिया, फिर डॉक्टर की आवाज़ आई, नहीं नहीं मैं इसका इलाज करूंगा, खासा दिलचस्प केस है। ऊँगते वक्त कानों में चील चिंगारती है, ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं, रात का खाना हलक तक ठूस लेता होगा। वैसे भी वो एक उम्दा केस है, इसकी स्टडी मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प साबित होगी। अच्छा शुक्रिया। रिसीवर रखकर इमरान ने फिर ठंडी सांस ली और जिसम ढीला छोड़कर टांगे हिलाने लगा। फिर कुछ देर बाद सुलेमान को आवाज़ दी, वो आया और एक टांग ढीली छोड़कर कमर पर दोनों हाथ रखे हुए खड़ा था। अबे क्या तुम दोनों ने अपने विजिटिंग कार्ड भी छपवा रखे हैं? जी साहब, मैंने तो उर्दू में छपाए हैं। अच्छा, इमरान खुश होकर बोला, ज़रा मुझे भी दिखाना। अभी लीजिए। सुलेमान भी खुश होकर कार्ड लेने दौड़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान इसके विजिटिंग कार्ड को चुटकी में दबाए मुतहयाराना अंदाज में पलके झपका रहा था। कार्ड पर तहरीजा एम सुलेमान BOAI MSc DSC ऑप्शन, अब मैं तेरा खाना पकाया करूँगा। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, क्योंकि BOAI मेरी समझ में नहीं आया। मेरा दावा है कि इसके नीचे की डिग्रियां भी आपकी समझ में नहीं आ सकती। सुलेमान बेहद खुश होकर बोला, बिल्कुल बिल्कुल, इमरान ने मायूसी से कहा, अब तू ही समझा दे। पूरे का मतलब है बावर्ची ऑफ अली इमरान MSc DSC ऑक्शन। इमरान ने दोनों हाथ उठाए लेकिन फिर सर पीट लेने का इरादा मुलतवी करता हुआ बोला, लेकिन कार्ड छपाने के लिए क्यों ज़रूरत पेश आई सुलेमान साहब? जी वो अक्सर बड़े बड़े लोगों में भी उठना बैठना हो जाता है ना, लोग नाम पूछ बैठते हैं। मैं कार्ड निकाल कर इनके सामने रख देता हूँ, मगर इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि आप बड़े लोगों में उठे बैठे? अक्सर आप कई कई दिन तक घर से गायब रहते हैं, इसलिए अपनी दो जानों के लिए कौन पकाता फिरे? फिर क्या करता है बे, इमरान ने आंखें निकाली। मजबूरन करना पड़ता है, सुलेमान को रहा। कल लूटे को कोल्ड बीफ और डबल रोटियां खरीद देता हूँ और ख़ुद आपका कोई बेहतरीन सूट पहनकर शहर में दावतें खाता फिरता हूँ। इतना बड़ा शहर है, दोनों वक्त कहीं ना कहीं तो शामियाना नज़र आ ही जाता है। कोई पूछता भी नहीं, इमरान ने हैरत से कहा। हिम्मत भी है किसी की ऐसे शानदार सूट में? जी हाँ, और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो बुरा सा मुंह बनाकर कार्ड थमा देता हूँ। वो मरूब होकर हाथों हाथ लेता है। ओ सुलेमान, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। जी साहब, तू किसी दिन मेरी भी मट्टी पलीत कराएगा। कैसे साहब? अगर किसी दिन कोई खोजी आदमी इसका मतलब पूछ बैठा तो बता दूंगा। क्या बता देगा? इमरान ने हैरत से कहा। यही कि मैं चर्च ऑफ आर्टिस्ट इंडस्ट्रीज में भी हूँ। हाय हाय, इमरान हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, अबे तू इतना काबिल कब से हो गया? वो जो कल्लूटा है ना, सुलेमान बाएं आंख मारकर आहिस्ता से बोला, अंग्रेजी में वही मेरा काम चलाया करता है। इमरान ने फिर ठंडी सांस ली और मुर्दा सी आवाज में बोला, जाओ दफा हो जाओ, रात को मूंग की दाल खाऊंगा। दफ्तर फोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ से कोई औरत बोल रही थी, इमरान भाई खुदा के लिए फौरन पहुंचिए। आप कौन हैं? बेगम फयाज। ओ खैरियत, बस आ जाइए, जैसे बैठे हों वैसे ही चले आइए। आखिर कुछ बताओ ना। ओ जल्दी कीजिए, दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकता हो गया। इमरान टाई की गिरा दुरुस्त करता हुआ फ्लैट से बाहर आया, की तरफ बढ़ ही रहा था कि कोई चीज एक झटके के साथ कोट के बाएं शोल्डर हेड को फाड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई और इमरान बेतहाशे चारों खाने चीर गिर पड़ा। फिर तेजी से करवट ली और टू सीटर के पीछे रेंग गया। दिल की धड़कन सर में धुमक पैदा कर रही थी। बेआवाज राइफल की गोली किधर से आई थी वो अंदाजा ना कर सका। चलती हुई शाहरा थी, ट्रैफिक भी खासी थी। फिर इमरान का इस तरफ अचानक गिर पड़ना दूसरों को अपनी तरफ क्यों ना मुतवज्जा कर देता। आसपास के कई दुकानदार जो इसे जानते थे दौड़ पड़े। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ इमरान साहब, क्या हुआ सरकार? कि कुछ नहीं, इमरान कुर्रा कर उठता हुआ बोला। वो अपना वही शाना टटोल रहा था जिसके पैर के छीटड़े उड़ गए थे। चंद लम्हे बाद उकड़ू बैठा पलके झपकाता रहा, फिर उठता हुआ बोला, पता नहीं क्यों चक्कर आ गया था। लेकिन कई नजरें उधड़े हुए शोल्डर पैड पर जमी हुई थी। इमरान फ्लैट की जाने मुड़ गया। कौम खां लंगड़ा भी लगा था, हालांकि कहीं खराज भी नहीं आई थी। फ्लैट में पहुंचकर कोट उतारा और एक जाने सोफे पर उछाल दिया। फिर फोन पर कैप्टन फयाज के घरेलू नंबर डायल किए। जवाब मिलने में देर ना लगी, दूसरी तरफ से नुस्वानी आवाज आई थी। बेगम फयाज, इमरान ने कहा। जी हाँ फरमाइए, कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं इमरान हूँ। ओ अच्छा, कहिए, तुमने कुछ देर कबल मुझे फोन किया था। मैंने नहीं तो, तुम्हें यकीन है? इमरान भाई, मैं आज मजाक के मूड में नहीं हूँ, दूसरी तरफ से नाखुशगवार लहजे में कहा गया। तो तुमने मुझे फोन पर कोई पैगाम नहीं दिया था? नहीं नहीं नहीं, शायद फयाज की बीवी झुंझला गई थी। इमरान ने चुपचाप रिसीवर फीडर पर रख दिया। सब कुछ रोशन हो चुका था। किसी ने इसे घर से बाहर निकालना चाहा था, इसलिए बआसानी किसी बे आवाज राइफल का निशाना बनाया जा सके। मगर वो कौन हो सकता था और क्यों? वो सोचता रूंगता रहा, फिर यक बेग चौंका और उठकर इस कमरे में आया जहां एक्सेटो वाला फोन रहता था। फोन पर किसी के नंबर डायल किए और माउथपीस में बोला, नैमानी फयाज सिफारत खाने के अफसर के बंगले से निकलकर किधर गया था? एक मिनट टॉकअप कीजिए, मैं सफदर को फोन करके मालूम करता हूँ। इमरान ने रिसीवर एक तरफ डाल दिया और फिर ख्यालात की वादियों में भटकने लगा। ये फिजा सिफारत खाने के एक ऑफिसर की निगरानी से शुरू हुआ था। शुभा था कि वो अपने मुल्क के लिए जासूसी कर रहा है। इसकी निगरानी के दौरान में डिप्टी सेक्रेटरी भी महकमा सुरागरस्थानी की नज़रों में आया। अजीब इत्तेफाक था कि इमरान के महकमे और महकमा सुरागरस्थानी ने बेक वक्त इस ऑफिसर में दिलचस्पी लेना शुरू किया था, लेकिन महकमा सुरागरस्थानी इससे बेखबर था कि महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस भी इस मखसूस मामले की तरफ मुतवज्जा हो चुकी है। फिर डिप्टी सेक्रेटरी की खुदकुशी और इसी दिन खुद इस पर हमला। इसका मतलब तो यही हो सकता था कि वो लोग भी इससे आगा थे कि इनकी निगरानी हो रही थी। इस आगही का वाहिद जरिया डिप्टी सेक्रेटरी ही रहा होगा और डिप्टी सेक्रेटरी को फयाज की बीवी ने आगा किया था। इमरान ने पूरा जिस्म खींच कर अंगड़ाई ली और फिर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज़ें आ रही थी। हेलो इमरान धाड़ा। यस सर, कैप्टन फयाज अपने ऑफिस में हैं, सफदर ने इतला दी है। वेट ऑल, इमरान ने सिलसिला मुनकता कर दिया। अब वो फिर लिबास तब्दील कर रहा था। थोड़ी देर बाद फिर इसने एक्सट्रो वाले फ़ोन पर यके बाद दीगरे ने तमाम मातहतों से रब्ता कायम करके बहैसियत एक्सट्रो इन्हें बताया कि इमरान पर इसके फ्लैट के करीब کسی نامعلوم آدمی نے بے آواز رائفل سے فائر کیا تھا، لیکن وہ بچ گیا۔ اب پھر آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے فلیٹ سے برآمد ہوگا، لہٰذا اس کی لاعلمی میں اس کی نگرانی کی جائے اور خیال رکھا جائے کہ اب اس پر کہیں سے حملہ نہ ہو سکے۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک اسے اپنے ماتحتوں کا منتظر رہنا تھا۔ وہ پھر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر ٹانگیں ہلانے لگا۔ اتنے میں جوزف کمرے میں داخل ہوا۔ موڈ بے حد خراب معلوم ہوتا تھا۔ عمران پر نظر پڑتے ہی اٹینشن کی پوزیشن میں آ گیا۔ کیوں؟ عمران اسے گھورتا ہوا بولا، تم نے وہاں گڑبڑ کیوں کی تھی؟ صرف تمہارا خیال تھا باس، اس نے نتھے پھلا کر جواب دیا۔ ورنہ میں وہاں بکواس بند کرو، تم نے اس لڑکی کی توہین کی تھی۔ اس نے میری توہین کی تھی، جوزف سینے پر ہاتھ مار کر کسی کنکھے کتے کی طرح گھبرایا۔ ابے تو صرف نگر ہی کہا تھا نا، میں نے بھی اسے صرف سفید کتیا کہہ دیا۔ خیر ڈاکٹر سے کیا باتیں ہوئیں؟ بہت وہ اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، وہ مجھے بھی ڈاکٹر نہیں معلوم ہوتا، کوئی خاص بات ہے اس کے ساتھ؟ اسے دیکھتے ہی میرے اندر سویا ہوا درندہ جاگ اٹھا تھا۔ وہ خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ تمہارا علاج کرے گا؟ نہیں تو وہ باسٹر کہنے لگا، تم حلق تک کھانا ٹھونس لیتے ہو کیا؟ اسی لیے اونگتے وقت تمہارے کانوں میں چیل چیختی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اکثر میں بالکل بھوکا ہوتا ہوں، لیکن چیل ضرور چیختی ہے۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے، سی کر پہن لو باس۔ ضرور، عمران سر ہلا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے تفکر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اور اس نے کہا ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے ملتے رہنا، کنسلیشن فیس کے نام سے 50 روپے بھی وصول کر لیے ہیں ولد حرام نے، اب میں کیا کروں گا؟ کیوں؟ میں نے سوچا تھا کہ اب تاڑی دفع ہو جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ جوزف پھر اٹینشن پوزیشن میں آ کر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ 5:30 بجے عمران فلیٹ سے باہر نکلا اور بے فکری سے اپنی 2-سیٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آج یہ گاڑی دن بھر کھلے میں ہی پڑی رہتی، کرائے کے گیراج تک لے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، جو فلیٹ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ 2-سیٹر کے قریب پہنچ کر رکا، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک گزرتی ہوئی خالی ٹیکسی کو رکوایا اور اپنے 2-سیٹر کے بجائے ٹیکسی میں بیٹھتا ہوا بولا، محکمہ سراغ رسانی کے دفتر چلو۔ وہ سوچ رہا تھا، جو لوگ بھری پڑی سڑک پر رائفل چلانے کی ہمت کر سکتے ہیں، تو اسے ختم کر دینے کے سلسلے میں کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ دفتر پہنچ کر اسے فیاض تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیوں؟ اسے وہاں سبھی پہچانتے تھے۔ فیاض ابھی تک کاغذات دیکھ رہا تھا، حالانکہ اسے 4 بجے دفتر سے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ عمران کو تشویش کی نظروں سے دیکھا اور سر کی جنبی سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم سمینہ کو بور کرنے کیوں گئے تھے؟ گیا تھا، عمران سر ہلا کر بولا، مگر مایوسی ہوئی، ان محترمہ کا کوئی قصور نہیں معلوم ہوتا۔ بات کسی دوسرے ذریعے سے ڈپٹی سیکرٹری تک پہنچی ہوگی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے اس نگرانی کا علم ہو گیا تھا؟ خودکشی، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر وہ لاوالد تھے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جو خودکشی کی طرف لے جا سکے، لیکن ٹھہرو، ڈاکٹر دواگو کی رپورٹ میں چند بچوں کا بھی تذکرہ ہے جو ڈپٹی سیکرٹری کا احترام نہیں کرتے تھے۔ ہاں، لیکن اس نے اپنے بچوں کا حوالہ نہیں دیا تھا، اس کے بھانجے اور بھانجیاں بھی اسی کے ساتھ رہتی تھی، پھر بھی لاولدیت تو خودکشی کا باعث نہیں ہو سکتی، عمران بولا، وہ جنسی اعتبار سے۔ خیر مار دو گولی، عمران لاپرواہی سے بولا، تم اس قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں میرے فلیٹ سے رخصت ہو کر کہاں گئے تھے؟ کیوں؟ فیاض کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ इससे कि तुम्हारी इस बौखलाहट ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। बस किस्मत ही बच गया, इमरान ने कहा और मुख्तसरन वो दास्तान दोहराई जो इसकी बीवी की फ़ोन कॉल और ख़ुद पर अनजाने हमले से मुतालिक थी। उगलो मेरी जान, इमरान कुछ देर बाद सर हिलाकर बोला, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ गई है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम पर हमले की क्या वजह हो सकती है। गालिबा मुझे भी इसी पर गौर करना चाहिए। क्यों? इमरान ने बड़े भोलपन से पूछा। यार बोर ना करो, मैं बड़ी उलझन में हूँ और ख़तरे में भी हूँ। वैसे वो सयामी बिल्ली वाली बेहद हसीन है, मुस्कुराती है तो फिजाएं गुनगुनाए उठती हैं, और बाकी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज उसे गुसीली नज़रों से देख रहा था। इसके खामोश होते ही ऊपरी होंठ भेज कर बोला, एक बात बताऊं, तुम इधर का रुख ना करना, नहीं तो रहमान साहब भी कुछ ना कर सकेंगे, समझे? और तुम्हें क्या कहूँ, हद से बढ़ते जा रहे हो। फिर नफरत से होंठ सिकोड़ कर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सीक्रेट सर्विस वालों के इंफॉर्मर हो, लेकिन सच कहता हूँ कि अगर मेरे महकमे के मामलात में टांग अड़ाई तो रहमान साहब का भी लिहाज ना कर सकूंगा, समझे? बिल्कुल समझ गया, इमरान ने सादत मंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। थोड़ी देर तक बोला, मैं तो ये पूछ रहा था कि तुमसे फोन पर किसने क्या कहा था। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फयाज ने फिर आंखें दिखाई। आप? अच्छा अच्छा जी, इमरान कुर्सी से उठकर अंगड़ाई लेता हुआ बोला, खैर देखा जाएगा अभी जाकर, तो मैं तुम्हें फिर वार्निंग देता हूँ, चक्कर में ना पड़ो। फयाज से घूरता हुआ बोला, मशवरे का शुक्रिया। इमरान ने फलट फलट हैट उठाकर सर पर जमाई और टाटा करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। फिर चारों अतराफ का जायजा लेते हुए इसने महसूस किया कि इसके मातहत बड़ी जानफिशानी से इसकी देखभाल कर रहे हैं। इमरान इनमें से किसी की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर आगे बढ़ता गया। इस बार इसने मोटर रक्षक को तरजीह दी और ड्राइवर को दूसरे से मुकाबले पर उकसाता हुआ आंधी और तूफान की तरफ घर आ पहुंचा। रात के 9 बज रहे थे। यहाँ जौदा और सलेमान रेडियो पर किसी मकामी कॉलेज के मुशायरे का इक्तिबास सुन रहे थे और इस शान से कि रेडियो पूरी आवाज़ से खुला हुआ था। इमरान को देखकर भी इन्होंने आवाज़ का हजम कम नहीं किया। इतने में मुअल्लिम की आवाज़ आई, अब मोहतरमा जाहिद खलीकुल जमान अपना कलाम पेश करेंगी। फिर मोहतरमा ने जैसे ही अपना पहला शेर ख़त्म किया, वाह वाह के बजाय मुसल्लम बेगम जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। अबे ओवर बख्तों, इमरान दांत पीस कर मुक्का हिलाता हुआ बोला, बंद करो, सुनने दीजिए। सुलेमान ने लापरवाही से हाथ झटक कर कहा, अच्छा बे क्या समझ में आता है तेरे? इमरान ने आंखें निकाली, सब समझ में आता है। सुलेमान ने इस बार इस तरह हाथ हिलाया जैसे कान के करीब मिनमिनाता हुआ मच्छर उड़ाया हो। अबे अबे होश में है या नहीं? वो पी कर शेर पढ़ते हैं, मैं पी कर शेर सुनता हूँ। जौदा तेरी समझ में क्या आता है? इमरान ने उर्दू में पूछा। अच्छा लगता बहुत, ये सब जो हाउ हाउ करता है। वाह वाह, हाउ हाउ नहीं, इमरान उछलकर इसकी गर्दन दबोचता हुआ बोला। बाएं हाथ से सुलेमान की गर्दन जकड़ रखी थी। इसी तरह दोनों को दूसरे कमरे में धकेल आया और फिर रेडियो भी उठाकर इनके सुपुर्द करके दरवाजे को जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। अगर ज्यादा आवाज से रेडियो खोलता पागल हो जाऊंगा, समझे? इसने खिड़की से इन्हें मुक्का दिखाकर कहा। इन्होंने फिर दांत निकाल दिया और सुलेमान रेडियो का प्लग साकेट में नस करने लगा। इमरान फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठा था। अब वो जिस्म को ढीला छोड़कर हज़्ज़े आदर टांगे मिलाने लगा, लेकिन फिर इस तरह चौका जैसे कोई ख़ास बात याद आ गई हो। पार्ट 3 यहाँ पर अख्तितम पसीर होता है। नॉवल डॉक्टर दुआगु का बाकी हिस्सा पार्ट 4 में समाप्त फरमाइए।